ओम शांति। सभी कहेंगे प्यार से ओम शांति। बहुत सुंदर आप सभी कल से बहुत कुछ सुन रहे हैं, यहाँ देख भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। राजयोग क्या चीज है, थोड़ी सी आपने चखाचुखी की, टेस्ट किया, लेकिन इस राजयोग का आधार क्या है और इसकी विधि क्या है वो अब हम आपको बताएंगे और फिर राजयोग का अभ्यास भी करेंगे। क्योंकि योग के नाम पर आज दुनिया में तो बहुत सारे योगा स्कूल्स है, बहुत कुछ योग के बारे में सुनाते हैं, पर योग को योगा कह करके सुनाते हैं और अधिकतर योगा जब कहते हैं तो उसमें कोई व्यायाम, स्थूल एक्सरसाइजेस, प्राणायाम यही आदि सिखाते हैं। लेकिन योग तो वास्तव में परमात्मा ने सिखाया है। गीता के अंदर हर अध्याय में योग का वर्णन है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, तो योग के कितने रूप बताए हैं, लेकिन कहां पर भी शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं बताया है। क्योंकि योग वास्तव में संस्कृत शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ होता है जोड़, कोई भी प्रकार का जोड़ वो योग है। और योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, योग और वियोग कहते हैं ना। और जीवन में योग और वियोग तो सदा ही चलता रहता है। अभी आप चंडीगढ़ से आए हैं तो यहाँ आने से पूर्व आपसे कईयों ने कहा होगा कि हम 10 तारीख मिलेंगे, 11 तारीख मिलेंगे, तो आपने यही कहा होगा नहीं मैं तो उस समय माउंट आबू में होंगा, मैं माउंट आबू में होंगी, मैं नहीं होंगी चंडीगढ़ में। और अभी आपको फोन कर रहे हैं तो हाँ बस मैं पहुंच जाऊंगा, 2 दिन में पहुंच जाऊंगा, है ना। तो जब यहाँ आना था तो यहाँ से योग हो गया और सबको यही कहते थे माउंट आबू जाना है। अब यहाँ से जब जाने का दिन आएगा तो कहेंगे हाँ वापस आ रहे आ जाएंगे 2 दिन में, तो चंडीगढ़ याद आ जाएगा। तो योग का शाब्दिक अर्थ है कोई भी जोड़, फिर चाहे वो भौतिक रूप से जोड़ हो, चाहे वो मानसिक रूप से जोड़ हो, और चाहे उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है उस प्रकार का योग हो। तो योग को समझना मुश्किल नहीं है। 3 रूप से योग होता है। भौतिक रूप से तो हम देखते हैं 2 चीजों को जोड़ते हैं, वो भी एक योग है। तो योग मतलब कोई कनेक्शन। हम यहाँ बिजली नहीं जल रही है पावर हाउस से, क्योंकि बिजली चली गई तो कहेंगे भाई फ्यूज उड़ गया है, तो फ्यूज की वायर जोड़ो। तो तांबे को तांबे से जोड़ते हैं फ्यूज में और फिर बिजली आती है, तो वो भी एक योग है। आप रेडियो ऑन करते हैं, कोई रेडियो स्टेशन चाहिए तो आप ट्यूनिंग करते हैं, वो ट्यूनिंग करना भी एक योग है। तो जो मीटर बैंड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पर वो रेडियो स्टेशन आती है, उस पर आप अपने रेडियो की सुई रखेंगे, वो आवाज आप कैच कर सकेंगे, तो उस रेडियो स्टेशन से आपका योग हो गया। अब ये फिजिकल चीजें हैं। 2 चीजें भी जोड़ते हैं वो भी योग है। दूध में चीनी का योग हुआ, तो जो चीज जिस चीज का योग हुआ, मिलन हुआ, वो गुण आ जाता है, दूध मीठा हो जाएगा चीनी डालेंगे। तो इस प्रकार से भौतिक रूप से तो हम योग जान सकते हैं, लेकिन एक मानसिक रूप भी है। हम जिसको याद करते हैं उसके साथ भी योग है। कई बार होता है ना, हम किसी को बहुत याद कर रहे हैं और अचानक वो व्यक्ति पहुंच जाता है, आप कहेंगे अरे क्या योग था मेरा, क्या योग था मेरा, आपको अभी अभी याद किया और आप आ गए, तो ये भी एक योग है जिसको मन से आप याद करते हो, मानो उसको आपकी याद पहुंच जाती है। हाँ, कई बार होता है ना, आप छींकते हैं या कुछ होता है तो कहेंगे कोई याद कर रहा है, हाँ, तो ये भी एक योग है। पर आध्यात्मिक रूप से योग माना आत्मा का योग या कनेक्शन या संबंध या मिलन परमात्मा के साथ, वो आध्यात्मिक रूप का योग है। और वो मिलन कैसे होता है, मन ही वो आधार है। इसीलिए गीता में आता है भगवान ने यही कहा, हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ। ये मन जो आज इतना चंचल हो गया है, इतना शैतान हो गया है, कहाँ का कहाँ बेलगाम घोड़ा होके भटकता रहता है, इस मन को मेरे में लगाओ। तो अर्जुन की यही शिकायत थी, कैसे लगाऊं, ये मन तो बहुत चंचल है। तो भगवान ने उनको दो शब्द दिए, दो कदम बताए कि मन को कैसे लगा सकते हो मेरे में। एक कदम बताया वैराग्य, क्योंकि मन क्यों भटकता है, व्यक्ति वस्तु वैभव घटना स्थान परिस्थिति न जाने क्या क्या, किसने के कहीं ना कहीं जहां भी मन जाता है, माना उनसे योग है, वही सोच चलता है, तो मन से वा मिलन हो गया। लेकिन उन बातों से वैराग, माना उनसे हम अपने आप को अलग कर सके। वैराग का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, पर मन से हम उसको अलग कर सके, वो हमको आकर्षित न करे ये सब बातें। इसीलिए का वैराग और अभ्यास, ये दो कदम बताए भगवान ने जिससे मन को मेरे में लगा सकते हो। अब वो वैराग तो कई समझते हैं ये हमारे लिए कैसे संभव है, अभी तो हम गृहस्थी है, इतनी जिम्मेदारी है, ये वो, हम कैसे इनको भूल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो छोड़ना तो है ही नहीं, लेकिन कैसे इनके बीच रहते हुए भी न्यारा रहना, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर है, ये स्थिति बताई है भगवान ने। छोड़ो कुछ भी नहीं, पर फंसो भी कहीं नहीं, क्योंकि फंस जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो फंसो भी कहीं नहीं, छोड़ो भी नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं, निभाओ जरूर परंतु न्यारा और प्यारा हो करके। अब ये एक बहुत बड़ी कला है, जैसे कोई नट होता है ना, पहले जमाने में रस्सी पर चलते थे, नुक्कड़ पर कुछ न कुछ खेल होते थे और व्यक्ति रस्सी पर चलता था लेकिन कभी गिरता नहीं था। नहीं तो रस्सी पर तो चलना क्या है, कहीं तो रास्ते चलते चलते भी गिर जाते हैं अगर बैलेंस नहीं रहा तो। और कोई रस्सी पर भी चलता है गिरता नहीं है, तो कितना बैलेंस होगा उसका, कितना संतुलन बनाया होगा। उसमें संतुलन भी चाहिए, लक्ष्य भी चाहिए, और कई मन और जगह न जाए ये भी जरूरी है, क्योंकि उनको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और बीच में हमें एक्सरसाइज वो ये बैलेंस भी रखना है, और फिर उसके साथ अभ्यास भी तो जरूरी है। तो ये भी राजयोग में ये सब बातें अगर हो जाती है तो राजयोग कोई मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए योग को समझना मुश्किल नहीं है। और राजयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, अपने मन के भी राजा बनते हैं और सबके दिलों के भी राजा बनते हैं। और राजयोग माना सबसे ऊंचे से ऊंचा योग, क्योंकि एक हिसाब से सब योगी है, क्योंकि किसी न किसी के बारे में सोचते हैं, तो जिसके बारे में सोचते उसके साथ योग है, तो योगी तो सभी हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा नहीं नहीं मैं योगी नहीं हूं, क्योंकि मन तो कुछ न कुछ सोचता ही रहता है ना, कनेक्शन तो आपका किसी न किसी से जुड़ा हुआ ही है। लेकिन ये मन ईश्वर में लग जाए तब कहेंगे राजयोग। तो सभी योगों का राजा, जिसमें हमारा संबंध उस सर्वोपरि से लगता है, जो सर्वोच्च है सर्वोत्तम है, उसमें मन लग जाए, इसको कहेंगे राजयोग। फिर विधि भी इसकी कोई कठिन नहीं है, सबसे सरल विधि है, क्योंकि कई समय से मैं पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, जप करती हूँ, तप करती हूँ, हवन करती हूँ, तीर्थ करती हूँ, हाँ माला फेरती हूँ, ये करती हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन फिर भी मन तो लगता नहीं। तो ये बहुत सरल विधि है, जिस सरल विधि से आप बहुत सहज कर सकेंगे। जैसे माउंट आबू कोई पहाड़ चढ़ कर के आए तो कितना मुश्किल है, लेकिन रोड बन गया तो इस रोड पर आप गाड़ी में बैठकर आ जाओ, 45 मिनट में एक घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। ये तो कितने घंटे घंटे लगते थे पहले पहाड़ों पर चढ़ते थे जब ये रोड नहीं था। तो इसीलिए वो विधि भी इतनी सरल है। और तीसरी बात, सबसे ऊंची बात, इससे जो प्राप्ति है वो भी बहुत ऊंची है। क्योंकि हम यही कहते हैं, जब किसी कोई कहते हैं ना, आप मेडिटेशन, किसी को कहते हैं मेडिटेशन सीखो, तो वो कहते हैं कि हाँ सीखेंगे, पर जरूरत क्या है मुझे, मुझे मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। तो फिर उनसे पूछते, अच्छा आपके पास कोई कमी नहीं है तो फिर भी एक कला के रूप में सीखो। ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि जब भी आपका मन अशांत हो, आपको उसी समय एकदम शांति का अनुभव हो सके। क्योंकि ये तो शिकायत हर एक करता है कि कमी नहीं है कोई जीवन में, बस शांति चाहिए। अब शांति चाहिए, शांति चाहिए केवल कहने से थोड़ी मिलती है, उसकी विधि जाननी होगी ना, कैसे हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए सर्वो सबसे ऊंची प्राप्ति किसको कहेंगे, जिसमें शांति की प्राप्ति हो, खुशी की प्राप्ति हो, शक्ति की प्राप्ति हो। और वो हम भगवान से मांगते हैं, किसी मनुष्य से थोड़ी मांगते हैं शांति या खुशी या शक्ति, ईश्वर से ही मांगते ना। इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, क्योंकि मन का विश्वास कमजोर हो जाता है तब वो शक्तिहीन हो जाते हैं, तब अशांत हो जाते हैं। तो इसीलिए वो प्राप्ति हमें होती है जिसके आधार से हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। अब उसके उसको समझना होगा। तो कई कहते कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूं लेकिन फिर भी मन नहीं लगता है, तो उसका कारण जानना होगा ना, क्यों नहीं लगता है मन। किसी व्यक्ति के लिए तो कभी नहीं कहा कि मेरा मन फलाने में नहीं लगता, फलाने में नहीं लगता, बस वो मन बिना मेहनत के लग जाता है वहां। मेरा मन मेरे बच्चे में नहीं लगता, मेरा मन मेरे पति में नहीं लगता, कभी ऐसे कहा क्या, कहा कभी? तो भगवान में नहीं लगता ऐसे क्यों कहते हैं? तो जरूर कोई कारण होगा ना। तो राजयोग वो कारण बताता है और फिर निवारण भी बताता है, तो सहज मन लग सकेगा परमात्मा में। तो सबसे पहला कारण है कि स्वयं की पहचान ही नहीं है। मैंने ये समझ लिया मैं एक माँ हूं तो बच्चे की याद आएगी, मैं एक पत्नी हूं तो पति की याद आएगी, मैं एक डॉक्टर हूं तो जो पेशेंट्स है वो याद आएंगे, मैं एक वकील हूं तो क्लाइंट्स आपके याद आ जाएंगे, मैं एक टीचर हूं तो स्टूडेंट्स याद आएंगे, है ना। माना जो मैं स्वयं की स्थिति में हूं वही फिर हम याद करते हैं या कर सकते हैं। तो मैं वास्तव में ये देह हूं ही नहीं। परमात्मा में मन क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने आप को ये देह समझ रहे हैं। ये देह तो एक रबर के समान है, इंसुलेशन है। जैसे तार को तार से जोड़ना है, करंट पास करना है, तो रबर को तो हटाना पड़ेगा ना। अगर हटाए नहीं और ऐसे ही तार जोड़ दी तो करंट कैसे आएगा? परमात्मा से शक्ति तब आएगी जब ये देह का अभिमान, जो एक रबर की तरह इंसुलेशन है, ये प्रकृति की चीज है, इस प्रकृति से आप ऊपर जा सको। क्योंकि परमात्मा तो प्राकृतिक है ही नहीं। कई कहते हैं हम परमात्मा को देख क्यों नहीं सकते, कैसे देख सकेंगे? अपनी आत्मा को देखा है कभी? आत्मा को देख सकते हैं तो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये अप्राकृतिक है, ये प्रकृति की चीज नहीं है। और ये आंखें तो प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक आंखें जो चीज अप्राकृतिक है उसको कैसे देख सकेंगे? वैसे भी आप देखेंगे आवाज है, आप उसको देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं नहीं ना। बिजली को देख सकते हैं क्या? माना ये सूक्ष्म चीज है ना। तो इसीलिए हाँ, जब वो बिजली आ गई पता चलता है, क्योंकि लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो उसको देख सकते हैं, चलता हुआ देख सकते हैं। तो आत्मा खुद को हम नहीं समझते, देह समझ रहे हैं, मैं फलाना फलानी फलाना, बस वही अपना परिचय है। अब आपको परिचय क्या मिला अपना, आप कौन हो, आप सभी आत्माएं, और आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। ये देह का संबंध परमात्मा के साथ नहीं है, देह का संबंध तो देहधारियों के साथ है, इस देह का संबंध प्रकृति के साथ है, इसीलिए मन भटकता है। तो पहला कदम राजयोग में है, पहले खुद को पहचानो, तो वो आपको कल बताया गया कि आप कौन है। फिर दूसरा कारण है कि मन क्यों नहीं लगता है परमात्मा में, क्योंकि परमात्मा कौन है यही पता नहीं। जितने मुख उतनी बातें हमने सुना दी ईश्वर के बारे में, तो मुझ गए और इंसान। अब एक बात के लिए 10 लोग 10 बातें सुनाई तो आप तो मुझ जाएंगे ना। इसीलिए परमात्मा की सही पहचान परमात्मा खुद ही देते हैं कि मैं कौन हूँ। इसीलिए गीता में आता है, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान खुद ही देता हूँ। क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो उसको नहीं पहचान पाए, देख तो सकते नहीं। इसीलिए परमात्मा की पहचान न होने कारण मन नहीं लगा। और तीसरा भी एक कारण है क्यों मन नहीं लगता है, क्योंकि मन मैला हो गया है, मन में विकार भर गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी न जाने क्या क्या, इतनी सारी विकृति मन में भर गई है, तो मन कैसे परमात्मा में लगेगा। परमात्मा की याद तो बहुत शुद्ध चीज है, जैसे दूध सफेद है, शुद्ध है, तो उसको रखने लिए भी तो बर्तन शुद्ध चाहिए ना। खटाई वाले बर्तन में रख दिया तो क्या होगा, फट जाएगा, जैसे ही उबाला दिया तो, या मैला होगा बर्तन तो दूध भी मैला हो जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा की याद उसी मन में ठहरेगी जो मन स्वच्छ होगा, साफ होगा। तो कैसे स्वच्छ करे, बर्तन को साफ करना पड़ता है ना अगर रखना है उसमें दूध, तो इसलिए वो स्वच्छ कैसे करे वो भी हमें राजयोग बताता है। अब ये 3 बातों को जब हम समझ लेते हैं तो मन परमात्मा में लगना शुरू हो जाता है। तो राजयोग क्या है, स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, इसी को हम राजयोग कहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कई समझते इसमें विचारों को शून्य करना होगा, कई इस प्रकार का मेडिटेशन बताते, बस मन में कुछ भी नहीं सोचना, ब्लैंक ब्लैंक शून्य। अब मन तो कभी शून्य हो ही नहीं सकता है, मन तो कभी शून्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है। ये आत्मा की शक्ति है, चेतनता का आधार ही सोच है ना। अब जो जड़ चीज है, जड़ चीज सोच सकती है क्या, आत्मा चेतन है, तो इसलिए आत्मा ही के अंदर मन है जिसमें सोचने की शक्ति है। तो मन को जड़ बनाना ये लक्ष्य नहीं है, मन कोई हमारा दुश्मन नहीं है, मन तो वास्तव में हमारा मित्र है, क्योंकि इसी मन को ही तो हमें ईश्वर में लगाना है। अब जिस मन को ईश्वर में लगाना है वो मन को जड़ बनाएंगे तो ईश्वर में भी कैसे लगेगा। इसीलिए विचारों को शून्य करना ये मेडिटेशन नहीं है। फिर कई समझते हैं मन के ऊपर दबाव डालना पड़ता है, हम कहते हैं दबाव भी नहीं डालो, सहज रूप से। अब वो सहज कैसे होगा वो आपको बताएंगे। फिर कई कहते हैं मन तो बहुत चंचल है, इसलिए मैं तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे से तो होता ही नहीं है। फिर यहाँ तक कह देते हैं कि जब बूढ़े होंगे ना तभी ये सब बातें सोचेंगे, अभी तो खाओ पियो मौज करो, अभी तो नाचो गाओ यही सब करना है, अभी थोड़ी ये बातें सोचनी होती, जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। लेकिन अगर बूढ़े होंगे तब करेंगे, क्या आपको ये निश्चय है कि तब करेंगे भी, क्योंकि मन तो आदी हो गया इसको 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 याद करने का, तो जब अंतिम घड़ी आएगी भी ना, तो भी उसको उस व्यक्ति को कहा जाएगा भी भगवान को याद करो, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा फलाना, हाय हाय हाय, खाली हाय हाय करते रहेंगे। अगर परमात्मा की याद अंत में हो, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसीलिए कहा वैराग और अभ्यास, एक सेकंड में मन कैसे देर से न्यारा हो जाए, ये अभ्यास होता है और यही राजयोग हमें सिखाता है। तो मन को न शून्य करना है, न कोई दबाव डालना है, और न ये सोचना है कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। ये बहुत बड़ी कला है, आजकल कला के रूप में भी बहुत सीखते हैं मेडिटेशन। जैसे ना एक भाई आया था, उसका बाप ने कहा कि मेरे बेटे को सिखाओ। हाँ, तो वो मिसाल दे रहा था कि मेरे बेटे को कहा कि तुम, वो बेटा कहे मुझे ड्राइविंग सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है। तो वो धनवान व्यक्ति था, वो कहते क्यों तुमको ड्राइविंग सीखनी है, आजकल युवक इतना फास्ट चलाते, गाड़ी कितने एक्सीडेंट्स करते हैं, फिर शराब पीते जो कुछ, तो बच्चे को ड्राइविंग नहीं सिखाना है, तुमको ड्राइवर देंगे ना हर वक्त तुमको जहाँ भी जाना, ड्राइविंग क्यों सीखनी है। तो वो पिता को एक्सक्यूज देता है कि डैडी अगर मैं सीख लूंगा ड्राइविंग तो कभी भी हो सकता है ड्राइवर ना मिले, तो मैं तो होऊंगा ना आपको ड्राइव करने लिए, तो इसलिए कला के रूप में ही सीख लो। तो मेडिटेशन को एक कला के रूप में ही सीख लो, अच्छा है ना, क्या नुकसान है, है क्या कोई नुकसान। जो सोचेंगे हम अंत में मरने समय कोई करेंगे, वो तो होगा ही नहीं। इसीलिए हम कर ही नहीं सकते, इसीलिए अभी क्यों करना, वो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे तक जिएंगे, ये भी गारंटी है क्या, गारंटी है क्या आज की दुनिया में, कोई गारंटी नहीं है। फिर कई कहते उसके लिए आसन लगाना पड़ता है, अब मेरे से तो आसन लगाना होता नहीं है, ये शीर्षासन पद्मासन ये सब तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हम कहते कोई जरूरत नहीं है, पद्म आसन बनाने की जरूरत नहीं है, तो घुटने की प्रॉब्लम होगी तो पद्मासन कैसे करेंगे, लेकिन पद्म जैसा जीवन जरूर बना सकते हैं, हर एक बना सकता है, उसके लिए हमें अभ्यास चाहिए। फिर कई कहते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ वातावरण में बहुत आवाज है, तो इतना आवाज के बीच में हमारे से नहीं होता है मेडिटेशन। तो हम कहते हैं आवाज बीच में विघ्न नहीं बन सकता है। आप मंदिर में जाते हैं, इतने घंटे बजते हैं, ढोल बजते हैं, भजन कीर्तन होता रहता है, झांझ बजते रहते हैं, क्या नहीं होता है, लेकिन उस समय आप कहते हैं ये आवाज इतना क्यों है, उसमें भी आपको शांति मिलती है, क्योंकि वाइब्रेशंस में शांति है। भले आवाज है लेकिन आवाज वो शांति को भंग नहीं करता है, आत्मा अंदर की शांति। और एक शमशान घाट में चले जाइए जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, एकदम सुनसान है, और वहाँ आपको या तो चलो शांति है, पर आप वहाँ डर जाएंगे, कहेंगे भाई यहाँ नहीं बैठना है शमशान घाट में। क्यों डर लगता है, शमशान में तो कोई है ही नहीं, तो डर क्यों लगता है बैठने में शमशान में अकेले, क्यों डर लगता है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस है ना शमशान घाट के वो अशांति के हैं। जो लोग किसी डेड बॉडी को लाते हैं उनका कोई मित्र होंगे, संबंधी होंगे, बहुत नजदीके होंगे, तो वो रोते हैं, वो रोते हैं, तो रोते हैं ना, तो भाई जो वातावरण है बहुत भारी हो जाता है, और भारी वातावरण होने के कारण मन लगता नहीं है वहां, भले आवाज नहीं है। इसलिए आवाज से मन नहीं लगता है ये कहना भी गलत है, भले आवाज हो, हमारे मन में तो आनंद ही आनंद है, वो अनुभूति चाहिए। कई कहते हैं कि इसमें आंखें बंद करनी होती है, हम कहते हैं ये भी नहीं करो, आप तो चलते फिरते खाते पीते चलो, आपको और टाइम नहीं मिलता है मेडिटेशन करने का, आप चलते फिरते भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि कोई बैठ कर ही करना है। फिर कई कहते हैं इसमें अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है, ये विपस्सना योग में ऐसे बताते अपने श्वास पर ध्यान करो, कैसे श्वास ले रहे हैं कैसे छोड़ रहे हैं। अब राजयोग में इसकी जरूरत नहीं, वो श्वास तो आपका नॉर्मल चलता ही है, अनलेस आपको कोई लंग्स की प्रॉब्लम हो, वो अस्थमा हो, कुछ हो तो और बात है, लेकिन नॉर्मल रीति से तो आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि श्वास चल रहा है नहीं चल रहा, तो नॉर्मल है, चलता ही है। तो श्वास पर ध्यान करने की बजाय या अपने प्राणों पर ध्यान करने की बजाय मानो जो प्राणों का पति प्राणेश्वर परमात्मा है उसमें मन लगाना है, वो है मुख्य। क्योंकि शक्ति उनसे मिलेगी, शक्ति कहाँ से मिलेगी, उस स्रोत से मिलेगी। फिर कई कहते अच्छा तो लगता है लेकिन ऊब जाते हैं। अब ऊब क्यों जाते हैं, क्योंकि चलो गुरुजी ने आपको मंत्र दिया कि ये मंत्र आपको जाप करना है, ओम नमो शिवाय का मंत्र दिया कि आप इसको दिन भर में 1,00,000 बार जाप करना, आपको काम दे दिया। अब आप जाप करते रहेंगे 1 बार 1,00,000 बार तो बहुत बड़ी गिनती है, 100,000 गिनती है 1,00,000, इतना गिनने के लिए तो आप तो काउंटिंग करना शुरू करेंगे, कोई तो काउंटिंग के लिए मशीन भी रखते हैं। 1,00,000 बार करना है। अब जब चलो 1,00,000 बार हो भी गया सारे दिन में, तो आपका योग शिव से लगा या गिनती से हो गया, किससे योग लगा कि 1,00,000 हुआ, अभी 10,000 हुआ, अभी 20,000 हुआ, 50,000 हुआ, तो वो हजार ही गिनते रहते हैं। पर ओम नमो शिवाय का जो जाप है उसमें पहले ओम शब्द का अर्थ क्या है, ओम मना अहम ओम मैं आत्मा हूं, फिर नमस्कार करने आए तो उसके लिए नम्रता चाहिए, फिर शिवाय माना शिव को आप नमः कर रहे हो, शिव को नमस्कार कर रहे हो, पर शिव कौन है वो पता ही नहीं है, तो इसीलिए मन लगता नहीं है। और बार बार वो ही रिपीट करना है तो बोर हो जाएंगे, किसी बच्चे को बार 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 यही कहो के वो नहीं करना है, बोर हो गया। तो जब तक उसमें कोई रचनात्मकता नहीं है, कोई उसमें अनुभूति नहीं है, उसमें कोई पूरी गहराई नहीं समझी है, तब तक तो हम अनुभव भी नहीं कर सकेंगे तो और बोर हो जाएंगे। अब यहाँ तो हर बार हम एक रचनात्मकता का अनुभव करते हैं इस राजयोग मेडिटेशन में, इसलिए आनंद ही आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो और फिर कई कहते हैं तो अच्छा लेकिन मुश्किल है, इसलिए नहीं छोड़ो छोड़ो हाँ मुश्किल है। हम कहते कुछ भी मुश्किल नहीं है इस संसार में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए कभी नहीं ये कहना चाहिए ये मुश्किल है। तो इसलिए क्या करना होगा, हमें पहले ये समझना होगा कि सहज कैसे, जैसे एक छोटा बच्चा अब उसने सीख लिया मम्मी पापा मम्मा पापा मम्मा पापा ऐसे सीख लिया, और कोई बोलना नहीं आता है तो मम्मी पापा ये तो सीख लिया ना, तो सारा दिन मम्मी 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 पापा 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 बोलता रहेगा। माँ बाप को अगर नहीं देखता है तो रोने लगता है, और जैसे माँ सामने आई माँ ने उठा लिया उसका रोना बंद, पापा ने उठा लिया तो रोना बंद। तो क्यों रो रहा था, क्योंकि माँ बाप को देख नहीं पाता था, मम्मी पापा पापा कर रहा था। तो आत्मा भी परमात्मा को याद करे उसके लिए कोई और चीजें नहीं करनी है, जैसे बच्चा बाप को याद करता है बिना मेहनत के, वैसे आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना मुश्किल नहीं है। अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर मैं कौन ईश्वर कौन। तो पहला आधार है मन को परमात्मा में लगाने का, वो है खुद को समझना। किसी को भी याद करना है तो पहला कदम होता है पहचान, उसका परिचय। आप ट्रेन में सफर करते हैं, आपके पास में जो दूसरी सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके साथ ही बैठा है, भले वो ऊपर उसको सीट है आपके नीचे या आपके ऊपर है, पर पहले तो नीचे बैठेंगे। अब फ्री बैठे हैं, एक दो से बातें करनी है तो उनसे पहले तो पहचान लेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करते हैं आदि आदि पहचान लेंगे। तो पहला कदम किसी में भी मन जाने का वो है पहचान, परिचय। फिर पहचान लेते 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 फिर आप उसमें एक्सचेंज करते हैं, अपने कार्ड एक्सचेंज करते हैं, भाई ये मेरा, कभी भी आप मुझे फोन करना। और पहचान लेते लेते अगर संबंध निकल आया कोई, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गांव में रहते थे, एक ही दफ्तर में काम करते थे, या कुछ भी ऐसा कोई समानता आ गई तो मन और उसमें लग गया। ऐसे ही केवल परिचय हुआ ठीक है, आप भूल भी जाएंगे, लेकिन कहा संबंध निकल आया तो और एक कदम आगे बढ़ेंगे। तीसरा फिर जा संबंध के बाद तीसरी चीज है प्रेम। संबंध होते होते उनकी कोई गुण आपको अनुभव हुए तो गुण जैसे ही आपको अनुभव हुआ उसे थोड़ा स्नेह हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। फिर उससे कुछ आपको प्राप्ति हो गई तो आप तो कभी उसको भूलेंगे ही नहीं, कहेंगे कि आपने तो मेरा बड़ा एहसान किया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। अब ये चार आधार है परमात्मा के साथ भी। अब परमात्मा के साथ ये चार आधार का मतलब है पहले आत्मा और परमात्मा की पहचान चाहिए, क्योंकि आत्मा का संबंध ही परमात्मा के साथ है, देह का संबंध नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मरता है ना तो आत्मा आप तो कहेंगे परमात्मा के पास गई और शरीर पांच तत्वों में विलीन हो गया, तो जो चीज जिसकी है उसको मिल गई। ये शरीर पांच तत्वों का मिला है तो आप अग्नि संस्कार करके वो पांच तत्वों की चीज पांच तत्वों में आपने मिला दी। और आत्मा के लिए क्या कहेंगे, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। मृतक शरीर पड़ा है वो तो शांत हो ही गया, और ये जब मृत्यु होती है तो मृत्यु का मतलब ही है, क्या कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे मर गया, क्या कहेंगे इनका देह शांत हो गया, है ना। तो देह की शांति का मतलब क्या है, देह की शांति का मतलब क्या है, मर जाना। क्योंकि शरीर तो कभी शांत होना ही नहीं चाहिए, सारा दिन दिल धड़कता रहता है, भोजन हजम होता रहता है, श्वास लेते रहते हैं, हर अंग काम करता है 24 घंटा, थोड़ा भी वो अंग रुक जाए काम करना तो खत्म है ना। तो इसीलिए उसको शांति नहीं चाहिए, हर समय वो एक्टिव चाहिए। इसीलिए अभी आप लोग बैठे थे तो आपको एक्टिव किया, हाँ ताली बजाओ ये करो, उससे हेल्थ मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है। तो शरीर तो हर वक्त एक्टिव चाहिए और मन एकदम शांत चाहिए, पर आजकल उल्टा है। सुना कैसे उल्टा है, मन इतना बेचैन इतना बेचैन इतना अशांत और शरीर को काम ही नहीं देते, दोनों उल्टा हो गया। तो दोनों उल्टा हो गया तब बीमारियां आती है। तो इसीलिए आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, और वो तब हम जब हम अनुभव करते हैं फिर संबंध हमारा एक ईश्वर के साथ ही है। वास्तव में देखा जाए जो देहधारियों के साथ संबंध है ना, ये एक जन्म का ही संबंध है। कोई माँ बनी, पिता बना, भाई बना, बहन बनी, पत्नी बनी, पति बना, बच्चा बना, जो भी, ये सब संबंध एक जन्म के लिए है। और वो भी किस आधार पर, कर्मों के आधार पर। और कर्म का हिसाब किताब पूरा हुआ कोई किसी का नहीं है, चाहे कितना भी नजदीकी हो, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन कोई किसी का नहीं है। हिसाब किताब पूरा हो गया उस आत्मा के साथ, उनको विदाई देनी पड़ेगी भले भारी मन से, हिसाब किताब पूरा हो गया। लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है वो कोई हिसाब किताब के आधार पर नहीं है, वो तो अनादि और अविनाशी संबंध है। हर जन्म में हमने परमात्मा को सब संबंधों से याद किया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो माता पिता भी वही है, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव बंधु सखा भी वही है, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव विद्यादाता भी वही है, ज्ञान का सागर है वो देता है वो ज्ञान, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो हम ईश्वर के साथ नहीं जोड़ सकते, बच्चा भी है वो हमारा। अब ये जब हम बातें मन में लाते हैं ना तो हमारा घनिष्ठ संबंध ईश्वर के साथ हो गया। फिर तीसरा है प्रेम। आप कहेंगे भगवान से तो हमारा बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार का आधार क्या है, स्वार्थ। जब कोई चीज की आवश्यकता है तब कहेंगे हे भगवान हे भगवान। तो भगवान कब याद आया? जब कोई चीज चाहिए, और जब सब कुछ है तो भगवान भगवान कौन है पता ही नहीं। तो वो सच्चा प्यार नहीं है। जहां प्यार होता है वहां स्वार्थ नहीं होता है, जहां प्यार होता है वहां तो त्याग होता है। जिससे प्यार है उसके लिए त्याग करने ले भी तैयार है, ये सच्चा प्यार होता है। कुछ मिल जाए तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और जिससे न मिले इन जैसा खराब कोई नहीं। तो भगवान के लिए भी ऐसे ही कहते, भगवान ने दिया बहुत अच्छा है, भगवान तुम बहुत दयालु हो, कृपालु हो, रहम दिल हो। और भगवान ने ले लिया, हे भगवान तुम कितने निर्दयी हो, तुम कितना न जाने क्या क्या शब्द हम भगवान को कहते हैं। तो दिया तो भगवान बहुत अच्छा है, और नहीं दिया तो, या ले लिया तो अब है तो उसका ही। आपके पास जो कुछ भी संसार में सब अमानत है, गाते भी है ना प्रार्थना में या आरती में क्या गाते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसका अर्थ भी तो समझा है ना, कि ये तन भी ईश्वर का है, मन भी ईश्वर का है, धन भी ईश्वर का, मेरा है ही नहीं। तो जबकि है ही ईश्वर का, तो अगर चलो थोड़ा तन रोगी हुआ, हे भगवान ऐसा कैसा मुझे रोग दे दिया, भगवान ने थोड़ी दिया, ये तो आपके कर्मों का हिसाब किताब है। हे भगवान मेरा धन ले लिया, भगवान ने थोड़ी लिया, अगर लिया भी तो आपके पास अमानत थी, ये अमानत में अगर आपने मेरा कह दिया तो वो तो अमानत में ख्यानत पड़ गई, मेरा थोड़ी है, ये तो उसका है। अब इसके लिए वो सच्चा प्रेम ईश्वर से कैसे जुड़े, ये राजयोग बताता है। और चौथा है प्राप्ति। परमात्मा से हमें इतनी प्राप्ति हो सकती है, जो भगवान कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना सकता हूं, क्योंकि दाता है ना, देने वाला दाता जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है। वो दाता इतना दे सकता है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। अब जैसे वो धनवान बाप का बेटा हो, धनवान है, उसको कोई कमी नहीं है पिता को, और बच्चा छोटी छोटी बात पे रोता है, मम्मी मुझे लॉलीपॉप चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए। अरे बेटा तुमको तो मैं क्या नहीं दे सकता हूँ, क्या तुम इसके पीछे रोते रहते, छोटी छोटी चीजें। तो इसीलिए भगवान कहते मैं तो तुमको विश्व की महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना सकता हूँ, तैयार हो उसके लिए। जब बस थोड़ा सा पैसा मिल जाए, या थोड़ा सा ये मिल जाए, थोड़ा सा वो मिल जाए, तो हम क्या करते, भिखारी बन के भगवान से भीख मांगते। संबंध अभी जोड़ा ही नहीं, अगर संबंध जुड़ जाए ना ईश्वर से सही, तो भगवान इतना छप्पड़ मां फार के देता कि कोई कमी जीवन में हो ही नहीं सकती है। इस जन्म तो क्या जन्म, जन्म तक कोई कमी नहीं हो सकती है, लेकिन संबंध जोड़ना चाहिए। अब ये चार आधार हमने देखे परमात्मा से जोड़ने के। तो पहले तो आत्मा और परमात्मा की पहचान चाहिए, कि मैं आत्मा हूं, जिसको रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, कोई साइकी भी कहते हैं। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप है। फिर वो आत्मा के गुण क्या है? जब परिचय देते तो उनकी फिर क्वालिफिकेशंस पूछते हैं, तो क्वालिफिकेशन होते कितनी पढ़ाई की है, क्या उसमें विशेषताएं हैं, क्या हुनर है, क्या गुण है। तो हर आत्मा के ये गुण है, सात मूल गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये आत्मा के सात मूल गुण हैं। तो शांति शांति मांगने की जरूरत ही नहीं है, शांति तो आत्मा का गुण है। पर देह का गुण शांति नहीं है, देह का गुण तो एक्टिवनेस है, पर मन का गुण शांति है। तो वो मन के गुण को हमें बाहर से नहीं लेना है, क्योंकि वो अंदर की शक्ति है। इसीलिए कहते हैं ना, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर में मिलेगी, बाहर कुछ नहीं है। अब अंदर जाओ तो किसके अंदर जाओ? शरीर के अंदर जाओ, वो डिसेक्ट करेंगे, शरीर को काटेंगे तो क्या मिलेगा? आत्मा, क्योंकि आत्मा इन गुणों की स्वरूप है। फिर आत्मा के भी दो एड्रेस है, बताया होगा कल। एक तो जैसे परिचय पत्र भरते ना, दो एड्रेस भरनी पड़ती है। एक एड्रेस है आपकी टेम्पररी एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है, क्योंकि प्रेजेंट में तो कई जगह रहते हैं, अभी वर्तमान कुछ है तो कहाँ आपसे कॉन्टैक्ट करें। और दूसरी होती है परमानेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अब आत्मा की प्रेजेंट एड्रेस कौन सी है इस शरीर में? ये भृकुटी, ये मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ, इस दो भवों के बीच में ये आत्मा जहाँ आज्ञा चक्र दिखाते वहाँ मेरा निवास है इस शरीर में। और परमानेंट एड्रेस हमारी कौन सी है? परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, कई नाम है उसके। फिर परिचय में एक लाइन एक आता है, पर परिचय में प्रश्न आपके आपकी आपकी जो व्यवसाय है वो कौन सी है इस समय, आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है। तो हर एक अपना अपना ऑक्यूपेशन लिखता है, मैं क्या करता हूँ। तो आत्मा का भी ऑक्यूपेशन है, आत्मा का व्यवसाय क्या है? आप कहेंगे डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, ये है, माँ है, जो भी है, पर ये तो सब एक जन्म के लिए है ना आपका व्यवसाय। पर आत्मा का असली व्यवसाय क्या है? एक एक्टर बन करके इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर अभिनय करना, ये आत्मा का एक्टर को या कर्तव्य को या पार्ट को है। कई कहते हैं भगवान ने हमको दुनिया में भेजा ही क्यों, तो क्यों भेजा? कोई भी एक्टर होता है, एक्टिंग उसको आती है, तो उसको मंच चाहिए एक्टिंग करने लिए। कई छोटी छोटी बच्चियां आती है, कहती मम्मी दीदी मुझे डांस करना है, डांस करना है, क्योंकि डांसिंग की कला है। तो हर आत्मा के अंदर कर्म करने की कला है, इसलिए उस कर्म करने की कला के लिए मंच चाहिए, फिर उसी अनुसार वस्त्र चाहिए, वस्त्र भी चाहिए और मंच भी चाहिए। तो मंच है ये सृष्टि और वस्त्र है ये शरीर। तो जब हम इस बात को हम समझते हैं तो आत्मा को समझना मुश्किल नहीं है। फिर जब हम कहते हैं परमात्मा, तो हम कहते हैं शिव बाबा, शिव अर्थात जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है। तो जब उस ज्योति स्वरूप को हमने पहचाना और उसके साथ आत्मा के सर्व संबंध है ये समझा, तो जो परमात्मा के गुण है वो आत्मा के भी गुण है, जो पिता के गुण होते हैं बच्चे के भी वही गुण होते हैं। परमात्मा शांति का सागर है तो आत्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा प्रेम का सागर है तो आत्मा प्रेम स्वरूप है। कई कहते हैं ना आत्मा परमात्मा का अंश है, हम कहते हैं अंश का अर्थ क्या? अंश का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा का कोई टुकड़ा है, जब कोई चीज है उसको तोड़ दिया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो टुकड़े फिर जुड़ के एक तो नहीं होगा ना। आत्मा कोई टुकड़ा होके निकल गई तो फिर उसमें समा गई, जुड़ गई, नहीं। आत्मा अनादि और अविनाशी है, उनका अस्तित्व न कभी था ऐसे था जो था ही नहीं, थी नहीं आत्मा, और न कभी ऐसा होगा जो आत्मा फिर न होगी। आत्मा सदा है ही है, परमात्मा सदा है ही है, दोनों का अस्तित्व सदा ही है। लेकिन अंतर क्या है कि परमात्मा का जो अस्तित्व है, उसके जो गुण है वो स्थाई गुण है, वो सदा ही शांति प्रेम आनंद दया का सागर है। जितनी महिमा गाओ उतनी कम, क्योंकि वो दाता है। लेकिन आत्मा उन गुणों का स्वरूप है, पर वो स्वरूप आत्मा भूल जाती है, दे अभिमान में आई तो भूल गई, और भूल गई तो कहेगी मैं अशांत हूं, मैं अशांत हूं। वास्तव में नहीं है वो अशांत, शांति आपसे दूर नहीं है, केवल एक सोच की दूरी पर है शांति, केवल एक सोच। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूं, बहुत अशांत हूं, बहुत अशांत हूं, फिर दूसरों को ब्लेम करते इसने कारण मैं अशांत हूं, इसके कारण मैं अशांत हूं, तो दुनिया की कोई शक्ति, यहां तक कि भगवान भी आपको शांति नहीं दे सकते हैं, ये हम आपको कह सकते हैं। परंतु इसके विरुद्ध आपने ये सोचा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं उस शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांति धाम का वासी हूँ, इस सृष्टि रंगमंच पर एक एक्टर हूँ, अभिनेता हूँ। एक सेकेंड में आपको शांति का अनुभव होगा, करके देखिए। तो शांति आपसे कितनी दूर है? केवल एक सोच की दूरी पर है बस। न कोई आपको शांति दे सकता है, न कोई आपको अशांत कर सकता है। ये सब आपकी सोच में है, ये सब ये मन की स्थिति है। अब वो मन की स्थिति जैसी बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। कोई आपको बंधन नहीं डाल सकता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अब ये फिर बहुत बड़ा विस्तार है। तो इसीलिए परमात्मा को समझना भी कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे मैं आत्मा उस परम धाम की वासी हूँ, परमात्मा भी उसी धाम का वासी है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसा बाप वैसा बच्चा, मेरा घर और परमात्मा का घर भी एक ही है। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप का घर ही तो बच्चे का घर होता है ना। एड्रेस कोई दूसरी थोड़ी होती है, बच्चे की एड्रेस भी माँ बाप की एड्रेस ही होती है। तो इसीलिए आत्मा और परमात्मा को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। पहले सेल्फ को रियलाइज करो, हु एम आई, फिर गॉड को रियलाइज करना बहुत सहज है। और परमात्मा के कर्तव्य क्या है? ऐसे नहीं कि सब कुछ कुछ ईश्वर ही करता है, नहीं नहीं। आत्मा का अपना पार्ट है, परमात्मा का अपना कार्य है, प्रकृति का अपना कार्य है, ये सब भगवान नहीं करता है। भगवान का कार्य बहुत अलग है। ईश्वर का कार्य क्या है? नई सृष्टि की रचना करना, सतयुग का निर्माण करना, फिर उसकी पालना करना और इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश की तैयारी करना, ये परमात्मा का कर्तव्य है। अब इसका बहुत विस्तार है, वो आप सेवा केंद्रों पर समझेंगे। तो अभी परमात्मा से संबंध जोड़ने की विधि क्या है? जैसे बताया ना, सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए, समानता चाहिए। आपकी बेटी और किसका बेटा है, उसका विवाह कराना है, तो क्या करते? दोनों की जन्म पत्री ज्योतिषी के पास ले जाते हैं कि इनका देखो योग है। तो योग होने लिए ज्योतिषी क्या करता है ना, पता है, अनुभवी होंगे आप सब, भाई दोनों की जन्म पत्री को मिलाता है और मिलाते समय क्या देखता है? नक्षत्र, ग्रह, संस्कार, स्वभाव, ये सब मेल खाते हैं। अगर मेल नहीं खाते, टक्कर है दोनों का, ग्रह टकराते हैं, संस्कार मैच नहीं होते हैं, तो वो संबंध कभी भी सफल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समानता चाहिए, विचारों में भी समानता चाहिए। पर चलो मान लो नहीं है समानता, पर फिर भी करना है विवाह, तो फिर ज्योतिषी से पूछते तो क्या करना होगा उसके लिए? अगर संबंध करना ही है, ग्रह जुड़ मिलाने ही है, तो क्या करना होगा? तो ज्योतिषी कहता है इतना त्याग करना पड़ेगा, इतना व्रत रखना पड़ेगा, इतना उपवास करना पड़ेगा, इतना दान पुण्य करना पड़ेगा, मतलब कुछ देना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब ये ग्रह मिलेंगे। अब वो भी करने लिए तैयार होना चाहिए अगर ग्रह मिलाना है तो। तो परमात्मा से भी योग होने लिए कुछ समानता चाहिए, ये देह अभिमान का त्याग चाहिए। देह में तो हूं मैं आत्मा, लेकिन उसका जो अभिमान आता है ना, वो त्याग, उसका त्याग चाहिए। और क्या मैं समझूं? आत्मा भी ज्योति स्वरूप, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप। तो जब हम योग में बैठते, मेडिटेशन में पहला संकल्प लिया था, मैं एक आत्मा हूं, ये देह अभिमान का त्याग। फलाने नाम रूप धर्म जाति भाषा ये सब देह के हैं, ये मेरा नहीं है। तो मैं कौन, ये सदा पहले याद रहे। तो जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो भी एक ज्योति है। फिर दूसरी समानता है, एक ही घर है, तो मन कहाँ चला जाए उसी धाम में चला जाए। ये घर नहीं जो इस संसार में आपका, ये तो बदलते रहते, लेकिन वो परमानेंट घर आत्मा का, परम धाम जो पांच तत्वों से पार है। गीता में आता है, हाँ, जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता वो मेरा परम धाम है, परमात्मा का वो धाम है, निराकारी दुनिया है वो, और मैं आत्मा उसी धाम की वासी हूं, या तो मेहमान हूं इस संसार में। ये दूसरी समानता घरे की, और तीसरी गुणों की समानता, वही गुण है जो परमात्मा के गुण, वो मेरे भी गुण है, बस केवल उसको स्मृति में लाना है, मांगना नहीं है, बस ये हमें करना होगा। और स्मृति में कैसे लाना है, ये नहीं कहना है कि शिव बाबा आप शांति के सागर हो मुझे शांति दो, नहीं, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। अब दोनों में कितना अंतर है, दो शांति और मैं हूं। कई बार ना एक बच्चा होता है, अभी थोड़ा एल्डरली है तो अभी पिता पर हक रखता है, एक भिखारी होगा वो कहेगा साहब 10 रुपया दो, पर बेटा क्या कहेगा, कभी नहीं कहेगा डैडी 10 रुपया दो, कहेगा डैडी मुझे 10 रुपया चाहिए, मालिक बनता है आपके जेब से ले, तो पिता कहेगा हाँ बेटा ले लो मेरे जेब से, तो मेरा, क्योंकि पिता का जो है वो मेरा है, ये हक रखता है, तो हमारा भी हक है परमात्मा पर, जो परमात्मा के गुण है वो मेरे भी गुण है, क्या ऐसे भी समझते हैं? हाँ, तो देखो राजयोग में इस ऐसे समझते हैं। तो चार स्टेजेस है राजयोग के, क्योंकि राजयोग का लक्ष्य क्या है कि जिस स्थिति में मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई थी, अति शुद्ध रूप में, अति पवित्र रूप में, उसी स्थिति में फिर वापस जाना है, उसी स्थिति में जाना है जिस स्थिति में मैं आई थी। और किस स्थिति में आई थी, बहुत शुद्ध रूप में आई थी। इसीलिए ना जब भी हम कोई ऐसा गलत बात सोचते हैं ना जो मुझे सोचना नहीं चाहिए, तो मन खाता है, अरे मैंने ऐसे क्यों सोच लिया, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा ये असली स्वभाव नहीं है, तो मन खाता है, क्योंकि मैं असल में तो बहुत श्रेष्ठ हूं आत्मा। जैसे सफेद वस्त्र हमने पहने हैं, थोड़ा सा भी दाग लगता है तो अच्छा नहीं लगता कि ये दाग क्यों, इतना सफेद और इतने दाग क्यों, क्योंकि वो छोटा सा दाग भी ठीक अच्छा नहीं लगता है। तो आत्मा भी अपने असली स्वभाव में बहुत शुद्ध है, तो उस शुद्ध स्वरूप को फिर से याद करो, स्मृति में लाओ कि मैं हूं, कौन हूं। इसलिए पहला जो कदम है इस राजयोग में, आत्मा और परमात्मा का चिंतन, चिंतन करना है, मैं कौन मेरा कौन। हमारी दादी जानकी जी थे जो मुख्य प्रशासिका थे दादी जानकी, तो वो यही नशे से कहती थी ओम शांति 3 बार कह करके कहती थी, मैं कौन मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो 3 बार क्यों कहा ओम शांति, पहले मैं कौन, मैं एक आत्मा शांत स्वरूप, ये मैं कौन। दूसरा मेरा कौन, तो मेरा वो परम पिता परमात्मा, वो शांति का सागर। और तीसरी बार ओम शांति माना, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर पिता की संतान शांति धाम का वासी। इस सृष्टि रंगमंच पर एक एक्टर, तो क्या करना है मुझे, एक्टिंग करनी है। एक्टर जो एक्टिंग करता है तो मंच से कोई चीज में मोह नहीं रखता है, बस एक्टिंग की फिर वापस अपने घर चला गया, कोई चीज उठा के नहीं ले जाता है वहां से, सब वहीं का वहीं, स्टेज पर जो मिला वो सब वहीं ही। तो इस संसार की भी कोई वस्तु न मैं लाई हूं न मैं ले जाऊंगी, ये शरीर भी नहीं चलेगा मेरे साथ, तो कैसे हमारी स्थिति होनी चाहिए, उपराम स्थिति। इसीलिए पहला कदम है आत्मा परमात्मा का चिंतन, और जैसे ये चिंतन करते हैं ना, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, मन हमारा शुद्ध होता जाता है, क्योंकि वो शुद्ध संकल्प हमने मन में किए। और फिर दूसरा कदम है आत्मा का परमात्मा से रूढ़यान, भगवान से बातें करो, अंदर ही अंदर मन ही मन में भगवान से बातें करो, लेकिन क्या बातें करो और क्या नहीं करो ये भी राजयोग में हम सीखते हैं। कई बार भाई बहने शिकायत करते हैं, हम शिव बाबा से तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन बाबा का जवाब नहीं आता है, जवाब नहीं आता है। हम कहते हैं क्यों नहीं आता, आपको पता है क्यों नहीं आता है? कई बार होता है बच्चा मम्मी को कहेगा, मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, बच्चा चाहिए 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 ही खाली कहता है, ये चाहिए। अब मम्मी को लेना नहीं है, इतना सारा खर्चा क्यों करेंगे, फिर फालतू जाता है, ये खिलौना चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो वो कहता रहता है मम्मी ये चाहिए, पर माँ जवाब ही नहीं देती है, क्योंकि उसको पता है जवाब दूंगी तो ये पता नहीं क्या करेगा, फिर ना रोएगा, ये करेगा, वो बोलता जाता है बोलता जाता है, पर माँ चुप। तो हम भी भगवान को क्या कि भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, भगवान चुप, कोई जवाब नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है ना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, और समय आ गए अपने आप मिलता है। जो भाग्य में है वो हमारे से कभी नहीं जा सकता है, अगर नहीं मिलता नहीं होगा भाग्य। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए, इच्छाओं से भरे हुए होंगे तो परमात्मा का सच्चा स्नेह नहीं अनुभव कर सकेंगे। इसलिए क्या करना होगा, परमात्मा से कैसे रूढ़यान करेंगे, तो प्रेम चाहिए उसके लिए। अब प्रेम कैसे ईश्वर से हो, स्वार्थ न हो और केवल प्रेम हो, वो कैसे बढ़ेगा हमारा परमात्मा से। भगवान से भी जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं या कीर्तन गाते हैं, तो कीर्तन का मतलब क्या, कीर्ति गाना, कीर्तन माने कीर्ति से शब्द आया कीर्तन, तो कीर्ति गाना माने स्तुति गाना, ईश्वर की स्तुति करना। लेकिन स्तुति करते 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 शिव बाबा या परमात्मा, आप शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो, दया के सागर हो, सारी महिमा कर डालेंगे, फिर कहेंगे थोड़ी सी हमको दे दो रहम दिल परमात्मा, थोड़ा सा रहम कर दो, भिखारी बन जाते हैं। तो भिखारी को कितना मिलेगा, अधिकारी को कितना मिलेगा, सोचो। तो हमको भिखारी बनना है या अधिकारी बनना है, तो अधिकारी बनने के लिए प्रेम चाहिए, थोड़ा त्याग भी चाहिए, ये देह अभिमान का त्याग चाहिए। तो परमात्मा से इस संसार की कोई वस्तु मत मांगो, दुनिया में इतने लोग हैं जिनको आपको जितना है वो भी नहीं है, आप सोचो, वो भी नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, तो और क्यों मांग रहे हो। इसीलिए कोई भी चीज मत मांगो भगवान से, लेकिन क्या करो, जो है उसका धन्यवाद करो। अब मैं आपसे पूछूंगी, धन्यवाद कितने करते हैं शिव बाबा को, परमात्मा को? सब नहीं करते, देखो अभी थोड़ा थोड़ा हाथ उठा रहे। और मांगते कितना है, मांगते कौन है, देखो देखो नहीं मांगते, सच्ची बिल्कुल नहीं मांगते हैं, कुछ मांगते हैं ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ना मांगो। सोचते हो भगवान से तो मांगना पड़ता है, नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं ना, ये सब आपकी परछाई है, सचमुच देखा जाए परछाई है। आप अगर परछाई के पीछे पीछे जाएंगे ना, तो परछाई आपसे लंबी लंबी होती हुई दूर जाएगी, क्योंकि रोशनी आपके पीछे है और परछाई आगे है। तो रोशनी पर ध्यान नहीं गया, परछाई पर ध्यान गया, और परिणाम क्या होगा, हाँ परछाई तो आपको कभी हाथ में आएगी भी नहीं, पर रोशनी भी आपसे दूर चली जाएगी, ईश्वर से भी आप दूर चले जाएंगे, क्योंकि उस परछाई के पीछे चाहिए चाहिए, वो चाहिए वो चाहिए। और वो तो हाथ कभी आएगी नहीं, तो कभी भी आपको संतोष तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा संतोष। का मिसाल देते हैं ना, पहले तो पैदल चलता था, फिर साइकिल मिल जाए चलो साइकिल मिल गई, फिर कहा कि नहीं अभी थोड़ा स्कूटर चाहिए चलो वो मिल गया, फिर कहे नहीं गाड़ी चाहिए, फिर कहे नहीं हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर कहे हवाई जहाज चाहिए, कहा क्या क्या चाहिए, हवाई किले ही बांधते रहते हैं। तो इसीलिए जरूरत नहीं है, जो है उसमें संतुष्ट रहो, तब आत्मा को सच्ची शांति का अनुभव इतना सुंदर होगा, और जो आपके भाग्य में होगा वो अपने आप ऐसे मिलेगा जो आपने सोच में भी नहीं था। इसीलिए भगवान से मांगो मत, लेकिन दिल से धन्यवाद करो। तो देखो, दिल से धन्यवाद करेंगे आपको परमात्मा का इतना प्यार मिलेगा, बहुत अनुभव होगा। फिर कई कहते हैं मैं तो वस्तु तो नहीं मांगता हूँ भगवान से, लेकिन भगवान से शांति मांगता हूँ, शक्ति मांगता हूँ। इतनी शक्ति तो देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब शक्ति भी मांगते क्यों, आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है। आपके अंदर विल पावर अगर है तो सब कुछ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। शक्ति कोई मांगने की चीज नहीं है, भगवान आपको कोई शक्ति कोई देगा थोड़ी, कोई चीज है क्या जो आपको शक्ति देगा। चलो फिजिकली शारीरिक रूप से आपको कमजोरी है तो आप भोजन करेंगे, वो भोजन खाएंगे, वैसा भोजन करेंगे, कोई टॉनिक लेंगे, आपको वो ग्लूकोज चढ़ाएंगे या जो कुछ भाई, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। परंतु मन की शक्ति के लिए आपको कोई बाह्य साधन नहीं चाहिए, मन की शक्ति वो आपकी सोच में ही है। मैं हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं, तो मेरा पिता सर्वशक्तिवान, तो मैं कोई शक्तिहीन थोड़ी हूं, मैं वो शक्तिशाली हूं। एक राजा का बच्चा होगा कभी कहेगा क्या, नहीं नहीं मैं तो एक राजकुमारी हूं, नहीं मैं भी कम हूं क्या, राजा की तरह ही हूं। कई बार होता ना, एक छोटा बच्चा अपने पिता की गाड़ी के पास खड़ा है, अब वो बच्चे से पूछेंगे बेटा ये किसकी गाड़ी है, मेरी। कभी कहेगा क्या मेरे डैडी की है, क्योंकि नाम तो बच्चे के नाम पर तो गाड़ी नहीं है ना, पिता के नाम पर गाड़ी है, लेकिन कभी नहीं कहेगा मेरे पिता की है मेरी। क्यों मेरी कहता है, अधिकार हाँ अधिकार है ना। तो इसीलिए जो ईश्वर के गुण है वो मेरे गुण है, गुण मांगने की चीज नहीं होती है, वो अनुभव करने की चीज होती है। इसीलिए शांति भी आपसे एक सोच की दूरी पर है। इसलिए न शक्ति, कोई गुण या शक्ति मांगने की जरूरत नहीं, वो आप में ही है। बस केवल ये सोचना है मैं कौन और मेरा कौन, इसको कहेंगे हाँ सच्चा प्यार ईश्वर के साथ। तो गुण भी मांगने की चीज नहीं है। फिर तीसरी चीज जो कौन सी हम भगवान से मांगते हैं पता है, सारा दिन भगवान से माफी मांगते रहते हैं, भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी भूलों को मत देखो, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भूले भी करेंगे और क्षमा भी मांगेंगे। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बार बार चीज गिराता है, अब माँ कहेगी बेटा तुम गिराते क्यों हो, तोड़ते क्यों हो, आप थोड़ा संभालो, ध्यान रखो, मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी। सारा दिन सॉरी सॉरी करता रहेगा तो मम्मी कहेगी सारा दिन सॉरी सॉरी क्या करते हो, कब तुम समझो, तुम संभलोगे भी या नहीं, बदलोगे भी नहीं अपने आप को, खाली सॉरी सॉरी करना है क्या। तो भगवान को हम कोई कम थोड़ी सॉरी सॉरी कहते, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी भूलों को मत देखो। और यहाँ तक कहते हैं हे भगवान मैं तो हूं ही भूलों का सागर और तुम दया का सागर हो, तो मैं भूले करता रहूंगा और तुम मुझे माफ करते रहना। तो भगवान को काम क्या दिया, माफ करना, और खुद को काम क्या दिया, भूले करना। आरती भी हम यही गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, हे भगवान मेरे विषय विकार मिटाओ, मेरे पाप हरो, और खुद देखो पाप करते रहते, विषय विकारों में पड़ते रहते हैं, फिर कहेंगे आप मिटाओ, तो भगवान मिटाए और हम करते रहे। हाँ, जैसे बच्चा होता है ना अपने कमरे में, वो इधर कुछ फेंका कुछ वहाँ फेंका, अपने घर कमरे को इतना गंदा कर देता है, फिर कहेगा मम्मी तुम साफ करो, तो मम्मी क्या कहती, मैं तो नौकर हूँ क्या, तुम साफ करो, तुमने क्यों इतना गंदा किया, तो मम्मी को नौकर बना दिया, अभी भगवान को भी नौकर बना दिया, हाँ मेरे पाप हरो, मेरी गंदगी निकालो मेरा मेरा कीचड़ निकालो, ये सब नहीं। तो फिर कई कहते क्या करें, हमने भूल की है तो माफी नहीं मांगे, हम कहते जरूर मांगो, मांगो माना सच बताओ, छिपाओ भी नहीं, क्योंकि भगवान से आप छिपा नहीं सकते हो, न अपने से छिपा सकते हो न भगवान से छिपा सकते हो। हाँ दुनिया से भले छिपाओ, वो भी एक दिन प्रत्यक्ष तो होगा ही, छिपाने की कोई बात नहीं, कोई गलत काम किया है सच बता दो, सच बता के हल्के हो जाओ, फिर जो सजा मिलनी होगी कोई बात नहीं, सच बताओ और फिर बदल दो अपने आप को, चलो सॉरी कह करके फिर दोबारा मत करो ना, पर दोबारा फिर करेंगे तो सॉरी का फायदा ही क्या हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कुछ गलती हुई शिव बाबा को सब सच बता दो, भले किसी और को ना बताओ, लेकिन फिर परमात्मा से प्रतिज्ञा करो, ईश्वर से प्रतिज्ञा करो कि मैं ये भूल फिर नहीं करूंगा, इसको कहते हैं विल पावर। अब उसके जब हम जीवन में ये समझते हैं तो देखो भगवान से इतना प्यार मिलता है और हमको वो सही मार्ग मिलता है, हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, मन साफ हो जाता है, हम हल्के हो जाते हैं और परमात्मा के प्रेम में खो जाते हैं। तो इसलिए तीसरी अवस्था है एकाग्रता की अवस्था, मन एकाग्र होने लगता है क्योंकि स्वच्छ हो गया मन, बुद्धि साफ हो गई, आत्मा हल्की हो गई। तो जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा परमात्मा शांति के सागर में समा गई, खो गई, सो लॉस्ट इन लव। कलयुगी दुनिया में मनुष्य एक दो से देह में फंसकर चलो प्रेम करते हैं, वो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉल इन लव, वो फॉल इन लव नीचे गिरते हैं। लेकिन परमात्मा से जब प्रेम है आप उस प्रेम में खो जाओ, जैसे जैसे बिंदु सिंधु में समा गया, वो सच्चा प्रेम है ईश्वर के साथ। इसीलिए मांगते रहेंगे या माफी मांगेंगे या केवल कोई चीज मांगेंगे गुण मांगेंगे तो कभी समाएंगे नहीं। तो परमात्मा की याद हमारी कैसी होनी चाहिए, कई कहते हैं हम करते हैं भगवान को याद, हम कहते हैं जो करते हैं ना भगवान को याद वो स्वार्थ की याद है। दूसरी याद है जो याद आती है ये स्नेह की याद है, स्नेह है तो याद आती है अपने आप। तीसरी याद है जो सताती है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, वो सताती है, लेकिन ये उनकी याद होती है जो फिर वापस मिलने वाले नहीं है, तो याद सताती है कि पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन परमात्मा की याद चौथी प्रकार की याद है और वो याद है समाने वाली याद, समा जाओ परमात्मा के गुणों में, समा जाओ। हाँ जैसे मिसाल देते हैं कि एक लोटा है, वो लोटे में छेद है मानो एक, तो आपने अगर भरा भी सागर से तो वो फिर पानी उस छेद से निकल जाएगा, पर उस लोटे को सागर में रहने दो तो वो सदा भरा हुआ रहेगा। अपने आप को दूर करो ही नहीं ईश्वर से, वास्तव में ये जो भावनात्मक स्थिति है परमात्मा सर्वव्यापी है, ये भावनात्मक स्थिति इतनी ऊंची है जो बात मत पूछो, सदा ही उनको मेरे साथ है, सदा ही मैं उनका साथी हूँ, साथी बन के वो साथ है, हजार भुजाओं वाला मेरे साथ है, मैं कभी अकेली नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, तो फिर कभी दुख भी नहीं होगा। अब दुखी क्यों होते, हाय मैं अकेली रह गई, मैं अकेला हो गया, कोई मुझे मदद नहीं करता, अरे हजार भुजाओं वाला भगवान आपके साथ है, अब अकेले थोड़ी हो। तो देखो ये जब ऐसा योग हो जो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे, एक होता है एकांतवास, एक होता है अकेलापन। दोनों में बड़ा अंतर है। एकांतवास तो बहुत सुंदर चीज है, कोशिश करते हैं सब तरफ से आवाज से दूर के एकांत में कहीं चले जाएं। इसलिए हॉलीडे पर चले जाते हैं, चलो पहाड़ों पर जाएंगे, चलो सागर के किनारे जाएंगे, एकांत। और दूसरा होता है अकेलापन। अकेलापन दुख देता है और एकांतवास में खुशी होती है क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। तो अकेलापन कभी नहीं महसूस करना, भगवान को साथी बनाओ और मिल करके उस ईश्वर के साथ कार्य कर रहे हो। आपको कोई कार्य कठिन नहीं लगेगा, वो आपको शक्ति मिलती रहेगी, आपको टचिंग मिलती रहेगी, आपका रास्ता साफ होता जाएगा, बहुत कुछ प्राप्तियां हैं। तो चौथी स्टेज है अनुभूति। और वो अनुभूति आपने एक सेकंड की ना, वो इतनी बड़ी प्राप्ति है, इतनी बड़ी प्राप्ति है जो आपका जीवन ही बदल देगी, जीवन ही बदल देगी। तो आत्मा परमात्मा का चिंतन ये मन को स्वच्छ करेगा। फिर परमात्मा से रू रिहान करो, उनसे बातें करो, आप उस परम सत्ता के साथ सब संबंध जोड़ो। वो हमारा माता पिता, शिक्षक, गुरु, खुदा, दोस्त, साजन, बच्चा, सब परमात्मा है। देहधारी तो है परंतु वो कर्मों का हिसाब किताब है, पर सच्चा अनादि अविनाशी संबंध हमारा परमात्मा के साथ है। इसका डिटेल आप सेवा केंद्र पर जाकर के समझना। और जैसे अब हम ये इस प्रकार की परमात्मा से रूर्यान करते हैं तो ऐसे लगता है कि परमात्मा को हमने सुनाया, दिल हल्की हो गए। मनुष्यों को भले मत सुनाओ, तो जो सच है वो सच बताओ। अच्छा काम करते हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर दुनिया में उल्टा करते, जो अच्छा काम करते तो दुनिया को वर्णन करते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने मैं करते रहते। और जो गलत काम किया बताना नहीं, बताना नहीं, बताना नहीं। तो गलत काम किया बता दो और हल्के हो जाओ और अपने को बदल दो। और अच्छा काम किया नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ। वो अच्छा कर्म भगवान देख रहा है, वो अपने आप उसका भाग्य बहुत ऊंचा देगा, पर जितना ज्यादा सोचा उसके बारे में वो भाग्य कम होता जाएगा। अब ये कर्म की गति है। तो इसीलिए रू रिहान करो, उसमें विश्वास रखो, वो हमारी बातें गोपनीय रखेगा, किसी को बताएगा नहीं, उनको कह के हल्के हो जाओ। और फिर भय मुक्त हो जाओ, क्यों? क्योंकि मैं कभी भी वो तो ये हमें कष्ट नहीं देता है वो, इसलिए परमात्मा कभी हमें दुख नहीं देता। कभी नहीं सोचो भगवान ने दुख दिया, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है तो मुझे ही चुकतू करना है, वो तो सदा सुखदाता है। फिर सुरक्षा अनुभव करो कि हाँ है, तो हम इसमें विश्वास और प्रेम रखते हैं कि परमात्मा मेरे साथ है, शक्ति का अनुभव होता है। तो वास्तव में हम कहते हैं परमात्मा की हर गुण की गहराई में जाकर के एकाग्रता लाओ। जैसे मैं शांति स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई तो मुझे और कुछ याद नहीं है बस। और वो ही अनुभूति आपको आपके अनेक जन्मों के पापों को भस्म करेगी। तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, ये भगवान के महावाक्य है। तो मन बुद्धि जब उसे एक परमात्मा में एकाग्र होती है, वो योग अग्नि है, वो एकाग्रता की शक्ति है। जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस होती है तो फोकल पॉइंट पर कागज रख दो वो जलने लगता है, क्योंकि केंद्रित की ना किरणें, तो यह उस बिंदु में केंद्रित करते स्वयं बिंदु बन करके, और वो उससे हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होते हैं। और जिस गुण की गहराई में गए वो उस गुण की अनुभूति आपने की, वो एक सेकंड की भी अनुभूति आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। कैसे परिवर्तन लाएगी? क्योंकि आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी, वो विल पावर आप में अनुभव होगी, और वो विल पावर आने से हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। तो कैसे आया परिवर्तन? पहले आत्मज्ञान मिला, फिर चिंतन किया, फिर निरीक्षण किया, फिर विश्लेषण किया, फिर संयम रखा, फिर बोध हुआ और फिर परिवर्तन हुआ। और जब आत्म परिवर्तन किया तो विश्व परिवर्तन क्यों नहीं होगा, ये हमारा नारा है संस्था का, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्योंकि स्मृति बदल गई, दृष्टि बदल गई, कृति बदल गई, स्थिति बदल गई, फिर वातावरण भी बदल गया हमारे लिए, विश्व भी बदल जाएगा। और ऐसे ही विश्व बदल कर फिर से सतयुग आएगा। तो क्या चाहते हैं हम सब, क्या चाहते हैं? ये जीवन तो हमारा सुखमय, शांतिमय, प्रेममय, शक्तिमय बने, पर जन्म जन्म हमारे सफल हो जाए, ये राजयोग से अनुभव होते हैं। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब इसका अभ्यास करना होगा। अब अभ्यास करने लिए कैसे देर से न्यारे बनो, मन को शिव बाबा में, उस परम धाम में लगाओ, इसका बहुत विस्तार है, वो आप सेवा केंद्र पर जाकर के और समझना। ठीक है, तो अभी आप 2 मिनट बिल्कुल जो आपने सुना उसको आप बिल्कुल उस स्वरूप में टिक जाएं। 2 मिनट के लिए आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, जो भी सुना वो स्थिति बनाइए। ये लाल प्रकाश जो जलता है ये हमें संकेत देता है कि हे आत्मा, अपने मन को परमात्मा में, परम धाम में ले जाओ, लगाओ। तो सीधा बैठेंगे, मन में खुशी लाओ, मैं आत्मा बहुत महान कार्य करने जा रही हूं। अंदर में नशा चढ़ाओ कि मेरे सब संबंध परमात्मा के साथ है। और पहला संकल्प, मैं एक आत्मा हूं, देह से न्यारी, अजर अमर अविनाशी, दिव्य ज्योति, प्रकृति के बीच विराजमान, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक, ये शरीर एक वस्त्र है और मैं आत्मा इस वस्त्र को धारण करने वाली एक एक्टर हूं। अब मन बुद्धि से इस देह रूपी वस्त्र से न्यारा बन जाए और 5 तत्वों से परे उस शांति धाम में पहुंच जाए, जहां चारों ओर शांति ही शांति है, सुनहरा लाल प्रकाश है, प्रकाश है, और मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर, पिता परमात्मा की संतान, शांति की किरणें परमात्मा से ले रही हूं और शांति के सागर में समा रही हूं और खो जाए परमात्मा के शांति के गुण में। महसूस करे उस शांति की शक्ति को स्वयं में, एक हल्कापन, न्यारापन, परमात्मा से प्रेम का अनुभव करे, वो प्रेम का सागर है। सर्व गुणों का दाता है। मैं आत्मा उन गुणों की अधिकारी हूं। उस सर्वशक्तिमान की मैं आत्मा संतान शक्ति स्वरूप हूं। अब इसी शक्ति को स्वयं में समाकर फिर वापस लौटे अपने शरीर में और उसी शक्ति को कर्म में ले आए, तो हर कर्म में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य आपका सार्थक होगा और जीवन में सुख और शांति की अनुभूति करेंगे और जन्म जन्म सफल होंगे। यही राजयोग है। ॐ शान्ति शान्ति।